الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. سورة الأعراف آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 40 سے 53 تک کریں گے. لیسن بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے آج. اس میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کچھ ڈائلاگز دیکھیں گے اصحاب الأعراف کے، اور یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ قرآن پاک میں یہ ڈائلاگ آیا ہے. اصحاب الأعراف کی بات چیت جو ہے نا، وہ صرف یہاں پہ ہے قرآن پاک میں. اسی طرح جنت اور جہنم والوں کے درمیان بھی ایک مکالمہ آپ دیکھیں گے، بہت ہی انسان کے لیے آئی اوپننگ یہ آیات ہیں، اگر وہ ان کو واقعی سنجیدگی سے لے اور پڑھے اور دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی آیات کی، ہماری آیات کی، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے تکبر کیا ان سے، کن سے، آیات سے، تکذیب بھی کی اور تکبر بھی کیا. تو اس کا مطلب تکذیب اور تکبر دو الگ الگ چیزیں ہیں. جب تکذیب ہوتی ہے تو اکثر اس کے پیچھے وجہ تکبر ہی ہوتی ہے. تکبر کا مزاج کیسے آتا ہے کہ جب اللہ کی آیات سامنے آ جائیں تو انسان کا کام یہ ہے کہ وہ جھک جائے، ان کو مان لے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب آیات آتی ہیں تو آیات ظاہر ہے آسمان سے تو ٹپک کے نہیں آ رہی، وہ تو کسی انسان کے اوپر ہی اتاری جاتی ہیں اور اس انسان کی زبان سے ادا ہوتی ہیں، اور ان انسانوں کو رسول کہا جاتا ہے. اب ایک بندہ جس میں اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کے سامنے کیوں جھکوں، اس کی بات کیوں مان لوں، کیا میں اس سے عقل میں کم ہوں، کیا میں اس سے اثر و رسوخ میں کم ہوں، کیا میں اس سے سرداری میں کم ہوں، خاندان میں اور دولت میں اور سٹیٹس میں، اس میں میں کسی طرح بھی اس سے کم نہیں ہوں، تو پھر میں کیوں اس کی بات مانوں. اور آپ نے دیکھا ہے اکثر جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ بہت بڑے کو بادشاہ نہیں ہوتے کسی ملک کے، وہ بہت بڑے بڑے سردار نہیں ہوتے. اب ان کو سوسائٹی میں جب وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے نا، تو اس طرح سے ان کو سیریس نہیں لیا گیا. اور خاص طور پہ کون نہیں سیریس لیتے تھے، مترفین، جو خوشحال لوگ ہوتے تھے، جن کے پاس آسائشیں ہوتی تھیں، جن کے پاس مال و دولت ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ہم ان کی بات کیوں مانیں، وہ جھٹلا دیتے تھے. اور جھٹلانے کے پیچھے کیا ہوتا تھا، ان کا تکبر، اپنی بڑائی. اور یہ چیز کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کو کچھ چیزیں منع نہ کیا جائے، اس کو ریسٹرکشنز اچھی نہیں لگتی. کوئی اس کو کہے یہ چھوڑ دو، یہ مت کرو، جو تم اتنے عرصے سے کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس کو پسند نہیں آتا اور فوراً اس کی انا جاگ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتے مجھے کہنے والے. ایسا سنا ہے نا آپ نے، کیونکہ ہم ایکچولی جب ہم بات کرتے ہیں نا پہلے کے لوگوں کی، کہ انہوں نے تکبر کیا اللہ کی آیات کے آگے، تکذیب کی، تو بس پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا کیا ہوگا تکبر، انہوں نے کیا کیا، تکبر کس طرح ہوتا ہے، یہ تکبر کرنا، اس کے کچھ ہمیں علم نہیں. حالانکہ تکبر کل بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ مسلمانوں کے اپنے اندر لوگ اللہ کی آیات کے سامنے تکبر کرتے ہیں، کیونکہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ جو فسق و فجور کر رہا ہے نا وہ کرتا ہی رہے، کوئی اس کو روکے نا. اب جب کوئی روکنے ٹوکنے والا آ جائے تو پھر وہ اس کو جھٹلاتا ہے اور پیچھے تکبر ہوتا ہے، میری بات نیچی ہو جائے، میں اس کی بات سنوں، तो वो फिर अल्लाह ताला की आयात को, अल्लाह को तो नहीं कह सकता मगर जो अल्लाह ताला की आयात को लेकर आता है उसी का इनकार कर देता है, कहता है हमने नहीं इसकी मानी, कोई पैगाम अल्लाह की तरफ से नहीं आया, हम नहीं ये समझते कि ये सच बोल रहा है, ये जादूगर है, ये काहिन है, इस किस्म के फिर अलकाबात दिए गए। तो पीछे साइकी क्या थी उसकी, ऐसे ही नहीं उठ के उन्होंने एक दिन उनको ख्याल आ गया और उन्होंने ऐसी बातें की, ये थी पीछे साइकी। तो वो जो कि अल्लाह ताला के अहकाम मानना नहीं चाहते थे, अपनी सोच को जब इंसान दुरुस्त दुरुस्त समझता है ना कि मैं ठीक हूं और मैं ही जो कह रहा हूं और मैं ही जो समझता हूं वही सही है, तो फिर अल्लाह ताला के अहकाम जब सामने आते हैं तो वो उनको भी हकीर जानता है, उनको कोई अहमियत नहीं देता। ये है वो तकब्बुर जो चला आ रहा है, और आज भी लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे और PhD स्कीम है और फलां किया हुआ और अल्लाह की आयात के मुकाबले में अपनी अक्ल को सामने रखते हैं और कहते हैं कि मैं बड़ी चीज, मैंने इतनी डिग्रियां ली हुई हैं, क्या हमें समझ नहीं है, हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, और अल्लाह ताला की आयात को रिजेक्ट करते हैं। कुरान पढ़ के सुना दे, आयतें पढ़ के सुना दे, वो मानते मानने को तैयार ही नहीं। तो ये है अल्लाह ताला की आयात के आगे तकबर। आप देखिए ना, तकबर माल का भी होता है, हैसियत का भी, खानदान का भी, हुस्नो जमाल का भी, मगर यहाँ पे तकबर अपनी अकल का है, मेरी अकल मेरी समझ ज्यादा है। तो चाहे अल्लाह की आयात भी आ जाए उनको अपनी समझ ज्यादा ही लगती है। आज कैसे हो रहा है देखिए तकबर, ये अल्लाह ताला की आयात सुनाई जाती है, अल्लाह ताला के अहकाम बताए जाते हैं और इंसान टस से मस ना हो, उसका रवैया वो ही रहे, ये तकब्बुर है। क्योंकि इंसान कहता है नहीं मैं बेहतर जानती हूं कि कोई और जानता है, कौन मुझे बताएगा। तो तकब्बुर, ये जो अपनी बड़ाई है ना, ये देखें फिर इंसान को कहां तक पहुंचा देती है कि फरमाया ला तुफत्तहु लहुम अबवाबु सम, उनके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। क्या मतलब आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है किसी के लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएं, क्या माना है इसका? देखिए इसके तीन माने हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होगा कि नंबर 1 उनके आमाल जो हैं वो आसमान की तरफ नहीं चढ़ते, यानी वो कुछ अच्छाई अच्छे काम कुछ नेकियां भी कर लें जिनको वो नेकी समझते हैं, तो आपको पता है ना ये आमाल भी आसमान की तरफ जाते हैं, हर इंसान का नेक अमल ऊपर जाता है, नेकियां ऊपर को चढ़ती हैं और वहां पे कबूलियत का शर्फ पाती हैं। तो इनके लिए दरवाजे ही नहीं खोलेंगे तो क्या कबूल होंगे, रिजेक्टेड, कुछ भी कर लें, अल्लाह ताला को परवाह नहीं है ऐसे लोगों की नेकियों की भी जो अल्लाह की आयात कोई कुछ नहीं समझते। नंबर 2 उनकी दुआएं आसमान की तरफ चढ़ती हैं लेकिन उनकी दुआओं के लिए भी दरवाजे नहीं खुलते, अस्तग़फिरुल्लाह। इंसान दुआ करे लेकिन दरवाजे ही नहीं खुल रहे, कबूलियत तो वहां होनी है ऊपर, तो जब दरवाजे नहीं खुलेंगे तो यानी दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 3 उनकी जब मौत आती है तो उनकी रूहें भी ऊपर को जब ले जाई जाती हैं तो उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। तो ये वो 3 चीजें हैं जिनके लिए उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते। दुत्कार दिया जाता है इनके नेक आमाल को, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है, तुम ये जो काम करके दिखा रहे हो कुछ नहीं उसको चाहिए, क्योंकि तुम अल्लाह की आयात को झुठलाते हो, तुम तकब्बुर करते हो, तुम दुआएं करते हो अल्लाह ताला नहीं कबूल करता, रूहों को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अल्लाह हू अकबर। इसके पीछे बर्रा बिन आजिब वाली जो हदीस है वो फरमाते हैं कि एक अंसारी के जनाजे में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र तैयार होने में कुछ देर थी, सब बैठ गए। हम इस तरह खामोश और बाअदब बैठे थे जैसे हमारे सरों पे परिंदे हैं, यानी इतने बिल्कुल स्टिल होके बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तिनका था जिसे आप जमीन पे फेर रहे थे। थोड़ी देर में आपने सर उठा के दो बार या तीन बार हमसे फरमाया, अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। फिर फरमाया, मोमिन जब दुनिया की आखिरी और आखिरत की पहली घड़ी में होता है तो उसके पास आसमान से नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते आते, गोया उनका चेहरा आफताब है, यानी इतने खूबसूरत और रोशन होते हैं जैसे कि सूरज हो। उनके साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो आकर मरने वाले के पास बैठ जाते हैं, जहां तक उसकी निगाह काम करती है फरिश्ते ही फरिश्ते उसको नजर आते हैं। फिर मलकुल मौत आके उसके सरहाने बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए इत्मीनान वाली रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रजा की तरफ चल। ये सुनते ही वो रूह इस तरह बदन से निकल जाती है जैसे मश्क के मुंह से पानी का कतरा टपक जाए। लेदर बैग होते थे, उसमें से पानी निकालना आसान होता है, और उसी वक्त एक पलक झपकने के बराबर की देर में वो जन्नती फरिश्ते इस पाक रूह को अपने हाथों में ले लेते और जन्नत के कफन और जन्नत की खुशबू में उसको लपेट देते, और उसमें से ऐसी ही उम्दा और बेहतरीन खुशबू निकलती है कभी दुनिया वालों ने नहीं सूंघी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमारे लिए भी ऐसा ही अंजाम करना। अब ये उसको लेके आसमानों की तरफ चढ़ते हैं। अब फरिश्तों की जो भी जमात उनको मिलती है तो पूछती है, ये किसकी रूह है, ये पाक रूह किसकी है? तो वो उसका नाम वो वाला बताते हैं जो बेहतरीन उसका नाम दुनिया में मशहूर था। वो कहते हैं फलां की है, यहां तक कि आसमाने दुनिया तक पहुंचाते, और उस आसमाने दुनिया का दरवाजा खोला जाता है उसके लिए, वो ऊपर चढ़ जाते हैं, यहां तक कि उसके साथ दूसरे आसमान तक फरिश्ते पहुंचते हैं, और फिर यहां से आगे उसके साथ उसके तीसरे आसमान तक पहुंचाने वाले फरिश्तों की एक जमात होती है, फिर वहां से आगे चौथे आसमान तक पहुंचाने वाले फरिश्तों की जमात होती है, इसी तरह सातवें आसमान तक उसकी रूह पहुंचा दी जाती है। अल्लाह अज्जा वजल फरमाता है, इस मेरे बंदे की किताब इल्लियीन में रख दो और उसको जमीन की तरफ लौटा दो। मैंने इसी से उनको पैदा किया, इसी में लौटाऊंगा, इसी में निकालूंगा। हमने वो पिछली दफा पढ़ी थी ना ये आयत, फीहा तहयीनुन व फीहा तमूतुन व मिनहा तुखरजून। बस तो वो रूह लौटा दी जाती है और वहीं उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसको बिठाते हैं, यानी कब्र में अब लौटा दी जाती है, और उसको पूछते हैं तेरा रब कौन है, वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है, वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं वो आदमी जो तुम में भेजा गया था वो कौन था, वो कहता है वो अल्लाह के रसूल थे। फरिश्ते उसे पूछते हैं तुम्हें ये सारा कुछ कैसे पता चला, वो जवाब देता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, उस पर ईमान लाया था, उसको सच्चा माना था। वही आसमान से एक मुनादी निदा करता है कि मेरा बंदा सच्चा है, इसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो, इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो। बस उसके पास जन्नत की वो इतनी तरोताजा खुशबुएं आने लगती हैं, कब्र में वहां की हवा आती रहती है, कब्र भी कुशादा हो जाती है, यहाँ तक कि जहां तक उसकी निगाह पहुंचती है कुशादगी कुशादगी नजर आती है। और उसके पास एक बहुत हसीनो जमील शख्स बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए खुशबू लगाए हुए आता है, उससे कहता है खुश हो जा, यही वो दिन है जिसका तुझसे वादा दिया गया था। वो पूछता है तू कौन है, तेरे चेहरे से भलाई टपकती है, वो जवाब देता है मैं तेरा नेक अमल हूं। अब मोमिन आरजू करता है अल्लाह कयामत आज ही कायम हो जाए ताकि मैं जन्नत में पहुंच के अपने माल और अपने अहले अयाल को पालू। इतनी उसकी शदीद तमन्ना होती बस जल्दी ही कयामत आ जाए। या अल्लाह ताला हमें सबको ऐसा अंजाम अता फरमाना। और दूसरी तरफ एक फासिक फाजिर काफिर, इनकी जब दुनिया की आखिरी घड़ी होती है तो जो अल्लाह ताला की आयात से तकब्बुर करे, जो अल्लाह की आयात को नहीं मानता, ये अल्लाह की आयात है ना, उसकी निशानियां हैं, इनको सीरियस लिया करें। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसको झुटलाना, इसको कहना मैं नहीं मानती जी, ये हम नहीं ये मानते, और अपने आप को बड़ा समझना जी। मैं तो समझती हूँ कि आज का वो दौर चल रहा है, आज के तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, आज तो ऐसा हो गया, और पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं। तो अब ये कौन सी पुरानी बातें आप निकाल के ले आए हैं, ये क्या बातें हैं, ये पिछले लोगों की कहानियां हैं, ये ऐसी, ये बातें करना कितने बुरे अंजाम तक इंसान को पहुंचा देती है कि आप देखें, ला तुफत्तहु लहुम अबवाब अस्समा, आसमान के दरवाजे ही उनके लिए नहीं खुलते। आसमान में भी दरवाजे हैं, इसका मतलब आपको याद होगी वो हदीस के जो मेराज की है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब आपको जिब्राइल अलैहि सलाम लेकर गए थे, तो आसमान वाले फरिश्तों ने सवाल किया था कि कौन है आपके साथ, कौन है, तो बताया गया था कि इनको इजाजत दी गई है आने की, बताया गया कि हाँ ये इजाजत से आए, तब दरवाजा खोला गया। ऐसे नहीं कि कोई भी ऊपर चढ़ जाए, इसीलिए तो जिन्नात और ये इनकी रसाई वहां तक नहीं है, पहरे आसमानों के अंदर। तो चले, हमें साइंस ने ये तो कभी नहीं बताया, जाहिर है उनकी तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं है, लेकिन हमें कुरान से ये पता चलता है आसमानों के अंदर दरवाजे मौजूद हैं, और इन दरवाजों से क्या क्या चढ़ता है, अमल चढ़ते हैं, दुआएं चढ़ती हैं, रूहें चढ़ती हैं। तो अल्लाह हमारे भी अमल ऐसे हों कि जिनके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाया कर, हमारी रूहें वो हों जिनको वेलकम किया जाए वहां पे। जैसे ये मैंने आपको बात बताई, किस तरह वेलकम, कितना प्यारा वेलकम किया जा रहा है, कितनी खुशामदेद है, कितना प्यारा नाम बताया जा रहा है, कहाँ तक इंसान का नाम पहुंचता है। बंदा इस दुनिया में अपने नाम के चक्करों में कितना रहता है, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। अगर वो नेक है तो मरने के बाद फरिश्तों तक में उसका नाम पुकारा जाएगा। अबे देखो कैसे उसकी इज्जत अफजाई की जा रही है, वहां तक सातवें आसमान तक उसकी रूह जाती है। और फासिक, फाजिर, गुनाहगार, और अल्लाह की आयात के साथ तकब्बुर करने वाला, और खुद को बड़ी चीज समझने वाला, और अल्लाह ताला की आयात को खातिर में ना लाने वाला, इनको हकीर समझने वाला, अपनी अकल को ऊंचा समझने वाला, ऐसे इंसान जब दुनिया की आखिरी घड़ी होती है तो उसके पास स्याह चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं आसमान से, उनके साथ टाट होता है, उसकी निगाह तक उसको ऐसे ही फरिश्ते नजर आते हैं, इतने खौफनाक चेहरों वाले, यानी उसी वक्त से ही उसको पता चल जाता है कि आगे मेरे साथ होने क्या वाला है। कोई कोई प्लेजेंट उसका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। फिर मलकुल मौत आके उसके सरहाने बैठ जाता है और फरमाते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ चल, उसके गुस्से की तरफ चल। अब ऐसी ऐसा मैसेज सुन के कौन सी रूह है जो चलना चाहेगी, जिसको आगे पता हो कि शामत आने लगी है, मेरे लिए आगे सजा रखी हुई है, अल्लाह की नाराजगी है। ये सुन के वो रूह जो है ना, वो जिस्म में छुपना शुरू जाती है, जैसे कोई भी मुजरिम, पुलिस आ जाए बाहर, पुलिस खड़ी और को निकलो बाहर, तो वो क्या करेगा, घर के किसी कोने में छुपना चाहेगा ना कि मुझे पकड़े ना। अब ये, अब वो बाहर अनाउंस कर रहे हैं कि निकलो बाहर, तुम, हमने घेर लिया चारों तरफ से, मगर वो निकलना नहीं चाहता। वो घरों घर में कहीं पे भी जाके चाहेगा कि मैं छुप जाऊं, इनके हत्थे ना चढ़ूं। तो ये रूह भी छुपने लगती है। अल्लाह ताला माफ करे कि कितनी मिजरेबल सिचुएशन है ये। अल्लाह ताला ऐसे अंजाम से हमें भी, हमारी नस्लों को भी महफूज रखे। तो मलकुल मौत जबरदस्ती घसीट के निकालता है उसको, उसी वक्त वो फरिश्ते जो मलकुल मौत के साथ आए होते हैं, वो उनके हाथ से ये रूह एक पलक झपकने में ले लेते हैं, और उस वो जहन्नुम से जो वो टाट लाए हुए उसमें लपेट देते हैं। अभी देखें जहन्नुम में पहुंचा नहीं है, लेकिन यहीं से उसके साथ वो अंजाम होने लगा कि नहायत गंदी सड़ी हुई बू उसमें से निकलती है, ये उसको लेके चढ़ने लगते हैं, लेके उसको भी चढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेके चढ़, लेके ऊपर को चढ़ते हैं। अब फरिश्ते, जो भी फरिश्तों के ग्रो होते हैं, वो उनको मिलते हैं, पूछते हैं, अरे ये नापाक रूह किसकी है, यानी जिसकी इतनी गंदी बू आ रही है। तो वो उसकी रूह का बदतरीन नाम दुनिया में जो था वो बताते हैं, फिर आसमान का दरवाजा उसके लिए खुलवाना चाहते हैं मगर खोला नहीं जाता। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत फरमाई, ला तुफत्तहु लहुम अबवाब السما। यह हदीस इस आयत के साथ अटैच है इसकी तफसीर में। तो अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि इसकी किताब सिज्जीन में सबसे नीचे की जमीन में रख लो। अब सिज्जीन और अलीहीन क्या है? क्या वो किताबें रखने की जगह है? क्या वो रूहों के रहने की जगह है? वो क्या मकाम है, या वो क्या कोई दफ्तर है, या क्या चीजें हैं? हम नहीं जानते। हो सकता है सब चीजें ही हो, इसके अंदर किताबें भी रखी जाती हो, नाम लिखे जाते हो, आमालनामे उसमें रखे जाते हैं, रूहें भी रखी जाती हो। फिर उसकी रूह वहां से पटक दी जाती है, आसमान से फेंक दी जाती है। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तिलावत फरमाई आयत के, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया गोया वो आसमान से गिर पड़ा। तो अब उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है और उसके पास फरिश्ते आते हैं, उसको आके उठा के बिठाते हैं, पूछते हैं तेरा रब कौन है? वो कहता है मुझे क्या पता। पूछते हैं तेरा दीन क्या है? वो कहता है मुझे इसकी खबर नहीं है। पूछते हैं बता उस आदमी के बारे में तू क्या कहता है जो तेरी तरफ भेजा गया था? वो कहता है कि मैं नहीं इसका जवाब जानता। जिसने अल्लाह ताला पे ईमान नहीं रखा, जिसने इस दीन के ऊपर चल के नहीं दिखाया, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में रोल मॉडल ही नहीं बनाया, ना सुना माता नाम और बस डोंट केयर, दीन है नाम का है बस। रब कौन है? रब को ये नहीं है कि ये कोई क्वेश्चन है जो रट के आया होगा या कोई कब्र के बाहर खड़ा होकर उसको बताना शुरू कर दे। बस कई लोग इतनी ये हमाकत का मुजाहिरा करते हैं, कब्र के बाहर खड़े होकर भाई तुमसे अब सवाल किए जाएंगे, तुम इस सवाल का ये जवाब देना, तुम इसका। वो सोचते हैं दुनिया में जैसे हम चीटिंग करा लेते थे ना, कि हम कोई बाहर इम्तिहान के कमरे में बैठा हुआ है तो हम उसको बाहर से बताते जाएं और वो चीटिंग करके वो लिखता जाए, पता नहीं यहाँ पे भी हम चीटिंग करा लेंगे। ऐसा नहीं है। जिसने वाकई अल्लाह ताला को अपना रब बना के जिंदगी गुजारी वो ही ये जवाब दे सकेगा। इतने खौफनाक है वो फरिश्ते जो कब्र के अंदर आने वाले हैं, मुनकर और नकीर जो सवाल करेंगे वो आसान नहीं होगा। जिनकी डिस्क्रिप्शन इतनी खौफनाक आती है कि इंसान पढ़ के भी परेशान हो जाते हैं। वो सब ऐसे लोग सामने खड़े हों, वो मखलूक जो कभी इंसान ने ना देखी है, उनके जवाब कौन दे सकता है? वो ही दे सकता है जिसने वाकई ये जिंदगी अल्लाह ताला को अपना रब बना के गुजारी और उसको रब समझा, उसके अहकामात पे चला। वो वाकई फिर वो जवाब दे सके जिसने इस दीन को अहमियत दी और इसको अपनी जिंदगी में शामिल किया, पूंग पूंग के अपनी जिंदगी में कदम रखे, इस दीन पे ही मुझे चलना है, इसको नहीं छोड़ना। वही सिर्फ जवाब दे सकते हैं जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उसवा बनाया, उनको फॉलो किया, वो कह सकेगा कि वो मेरे रसूल है। बाकी तो नहीं कह सकेंगे। रटा दें आप जितने मर्जी सवालों को, कोई कुछ इससे फायदा नहीं होगा। उसी वक्त आसमान से निदा होगी, मेरे इस गुलाम ने गलत कहा, इसके लिए जहन्नम की आग बिछा दो और जहन्नम का दरवाजा उसकी कब्र की तरफ खोल दो। वहां से उसको गर्मी और आग के झोंके आने लगेंगे और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि इधर की पसलियां उधर और उधर की इधर घुस जाएंगी। और उसके पास एक नहायत मकरू और डरावनी सूरत वाला, बुरे कपड़े पहने हुए, बुरी बदबू वाला एक शख्स आएगा और उससे कहेगा, अब अपनी बुराइयों का मजा चख, इस दिन का तुझसे वादा किया जाता था। वो पूछता है तू कौन है? तेरे तो चेहरे से ही वहशत और बुराई टपक रही है। जवाब देगा मैं तेरा खबीस अमल हूं। और वो कहने लगता है फिर कि या अल्लाह कयामत कभी कायम ना हो। तो यहां से पता चलता है अमल कहाँ तक इंसान को रुसवा करता है। ये अमल जो है ना किधर तक इसको जलील करके रख देता है। ये अमल ही है ना जिसका उसने कहा कि ये तेरा खबीस, मैं तेरा खबीस अमल हूं जो तेरे साथ यहां पे भी रहूंगा। एक और जगह से हमें पता चलता है, एक और रिवायत से, कि मोमिन की रूह को देख के आसमान और जमीन के तमाम फरिश्ते दुआए मगफिरत और रहमत करते हैं और उसके लिए आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं। हर दरवाजे के जो फरिश्ते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट फरिश्ते हैं, यानी गार्ड्स हैं समझ लें दरवाजों के, तो उनकी यही तमन्ना होती है कि अल्लाह करे ये रूह हमारी तरफ से आसमान पे चढ़े। सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर। इनको कितना कितनी ये रूह पसंद आती है। याद रखें, जो अल्लाह का फरमा बरदार है ना, सारी कायनात उससे मोहब्बत करती है, चाहे वो कितना ही धुतकार आ जाए इंसानों के अंदर। जाहिर है वो नाफरमान ही लोग होंगे जो उसको धुतकारेंगे, वरना अल्लाह का जो फरमा बरदार है उससे सब ही प्यार करते हैं, कि सब अल्लाह के फरमा बरदार है, कायनात की हर चीज अल्लाह की फरमा बरदारी कर रही है। अस्तग़फिरुल्लाह। तो उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, वला यदखुलून अल जन्नता, और नहीं वो दाखिल होंगे जन्नत में। जन्नत में भी नहीं एंटर हो सकते, रूहों की भी रुसवाई, रूहों को भी फेंक दिया जाता है आसमानों से, यानी रूह के साथ भी कैसा सलूक होता है जैसे कि किसी को धक्के दे के निकाल दिया जाए, उसकी कितनी यानी उसकी बेइज्जती है, इसी तरह रूह को पटखा जाता है वहां से, और वो जन्नत में भी दाखिल नहीं हो सकती। जन्नत भी ऊपर को है, कब तक नहीं दाखिल हो सकती? हत्ता यली जल जमलु फी सम्मिल कियात। यानी ये एक एनालॉजी दी गई है, ये एक मिसाल दी गई है, जब तक के ऊंट सुई के नाके में से ना गुजर जाए। सुई के नाके में तो धागा डालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक वक्त आता है इंसान की नजर ऐसी हो जाती, वो यानी इतना सा धागा है वो भी अंदर दाखिल होना मुश्किल हो जाता, तो कहाँ ऊंट दाखिल होना, कभी पॉसिबल है कि उसमें से ऊंट गुजर सके? यानी बताया गया इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है कि वो कभी जन्नत में दाखिल हो जाए। ये अलग बात है कि हमें बड़ा शौक होता है बाज लोगों को जन्नत में दाखिल कराने का, खुद का कुछ पता नहीं लेकिन दूसरों की बड़ी फिक्र होती है कि फलां क्यों नहीं जन्नत में जाएगा, फलां क्यों नहीं ऐसा होगा। वो चाहे अल्लाह की आयातों ना मानता हो, झुठलाता हो, मुतकब्बिर हो, नहीं वो तो हम कहते हैं कि आपके कैसे कह सकते हैं कि इसके लिए जन्नत नहीं है। तो ये देख लें, कुरान कह रहा है कि ऐसे काफरों के लिए जन्नत नहीं है, ऐसे मुतकब्बिरीन के लिए, ऐसे तकजीब करने वालों के लिए। और ये बहुत बहुत केयरफुल हो रहने का मामला है, इंसान एक आयत की भी अगर तकजीब करता है ना, तो ऐसे ही है जैसे पूरे कुरान की तकजीब करती है। मसलन कोई औरत उठ के कहती है, मैं नहीं मानती ये पर्दे पर्दे की आयतों को, और इसको मैं नहीं ये समझती कि ये सही है, हम नहीं मानते। अब एक चीज होती है कि इंसान कहे मुझसे नहीं हो पा रहा, अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे, और एक होती है हम नहीं मानते ज़कात को, हम नहीं मानते ये वाला जो हुक्म है, ये मैं नहीं मानती, सूद की जो बात है ये मैं नहीं मानती, ये जो मैं नहीं मानती है ना वो है तकजीब कर देना, जुटला देना। क्यों नहीं मानते आप? इसलिए कि मैं ये समझती हूं, ये है तकब्बुर। बात आप समझ आ गई है? ये ना सोचे कि कोई हवाई मखलूक ही आके करती है, या कुरैश मक्का देखो वो ऐसे किया करते थे। आप तो आज देखें तो जगह जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो यही काम कर रहे हैं। वकदालिका नजज़िल मुजरिमीन, इसी तरह हम जजा देते हैं मुजरिम को। यहां से पता चला कि जजा जो है ना, जजा का वर्ड, वो भलाई के लिए भी आता है और बुराई के लिए भी आता है। यानी जजा जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको अच्छा ही बदला मिले, जजा बुरे बदले के लिए होता है, क्योंकि यहां पर देखे मुजरिमों के लिए आया। इसीलिए जब आप दूसरे को कहते हैं ना जजाकल्लाह, तो जजाकल्लाह सिर्फ कहना काफी नहीं, अल्लाह आपको बदला दे, वो बदला तो बुरा भी हो सकता है, जजाकल्लाह खैरन कहना जरूरी है कि अल्लाह आपको अच्छा बदला दे, ठीक है? क्योंकि जजा उर्दू में हो सकता है हम जजा सिर्फ नेकी को कहते हो, लेकिन अरबिक में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के बदलों के लिए जजा का लफ्ज आता है। लहम मिन जहन्नम मिहाद, लहम लिए उनके, मिन जहन्नम जहन्नम में से, मिहाद है ऐसे लोगों के लिए, जन्नत में तो दाखला नामुमकिन हो गया, तो अब किधर जाएंगे वो, उनके लिए कौन सा ठिकाना है? उनके लिए फिर जहन्नम है, जो उनका बिछोना भी होगी। वो मिन फौकिहिम गवाश, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, और उनके ऊपर भी ओढ़ना भी उनकी वो ही आग होगी। यानी मैट्रस भी नीचे आग का और ऊपर कंबल या चादर जो हम लेके सोते हैं ऊपर भी आग। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, उनके लिए उनके ऊपर भी आग की छतरियां होंगी और उनके नीचे से भी। सूरह हुमज़ा में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अलैहिम मुसदा, वो उनके ऊपर बंद कर दी जाएगी आग, यानी वो आग के अंदर घिरे हुए होंगे। जब ऊपर और नीचे कोई चीज हो तो इसका मतलब उस चीज ने इंसान को लपेट लिया, तो आग ने उनको चारों तरफ से लपेटा होगा, क्योंकि नीचे भी है वो ही चीज है और ऊपर भी जहन्नम ही है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। देखिए हम जब दुनिया में भी गर्मी के दिन होते हैं, हम जरा सा एसी बंद हो जाए, पंखा बंद हो जाए, तो हम कहते हैं हाय दम घुट गया, हाय हमसे सांस नहीं आ रही, हाय हमें पता नहीं जैसे कयामत ही आ गई हो। तो क्या ये गर्मी है, 100 डिग्री हो गया होगा, क्या ये गर्मी है जिसके अंदर इंसान जिंदा बैठा हुआ। वो आग कैसी होगी जिसमें ना जिंदगी है ना मौत, ना उसको जिंदा कह सकते हैं ना मुर्दा। जरा सी देर के लिए आग छू जाए, सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए, चंद सेकंड के लिए, तो इंसान की जिल्द का क्या हाल होता है। और ऊपर और नीचे आग होना जिससे निकल नहीं सकते, उसका क्या हाल होगा। जबकि वो आग दुनिया की आग जैसी भी नहीं है, वो तो इससे 69 टाइम ज्यादा गर्म है, यानी ये 170th हिस्सा है उस आग का। ये तो धो धो के वो आग जहन्नुम की जो है वो धो धो के फिर दुनिया में भेजी गई। अस्तग़फिरुल्लाह। दुनिया में इसका तसव्वुर करें तो जैसे दुनिया की आग को देखें तो अवन कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी आग नहीं होती, एक टेम्परेचर ही होता है। तो इसका तसव्वुर करना भी महाल है इस दुनिया में। अल्लाह ताला हम सबको और कुल मोमिन मर्दों और औरतों को और हमारी नस्लों तक और हमारे आबाओ अजदाद और हमारे छोटे बड़े और सबको इस अंजाम से महफूज रखे। वकज़ालिक नजज़िज़्ज़ालिमीन, और इसी तरह हम जजा देंगे जालिमों को। मुजरिमों के लिए क्या है, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, आसमान के दरवाजे नहीं खुलते। जालिमों के लिए क्या है, जो जालिम है, जुल्म क्या चीज होती है, हकदार को उसका हक ना देना। अल्लाह ताला का हक है कि जो उसने हुक्म दिया उसको माना जाए, सरे तस्लीम खम कर दिया जाए, समय ना वाता ना किया जाए। अल्लाह हमने सुन लिया, हमने मान लिया, डर डर के रहा जाए, अल्लाह ताला की किसी बात की नाफरमानी ना हो जाए, कहीं कोई मेरे अंदर बड़ाई का अपना एहसास ऐसा ना आ जाए कि मैं अल्लाह की आयात को पीछे कर दूं। अस्तग़फिरुल्लाह। और जो इंसान इससे दो चार हो गया, खुद सोचिए कि क्या उसने जिंदगी कितनी भी ऐश में गुजारी हो, जिसका ये अंजाम हो गया उसने क्या पाया, क्या पाया। वो तो फेलियर ही फेलियर है। दुनिया में वो कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटियों से उसने पीएचडी ना किया हो, आईवी लीग के उसके पास डिग्रियां क्यों ना हो, ये तो वो जगह हदीस में आता है जहन्नुम का अहाता चार दीवारों पर मुश्तमिल है, यानी उसकी बाउंड्री वॉल जो है ना वो चार दीवारें हैं, हर दीवार के दरमियान 40 साल की मसाफत है, यानी 40 साल तक चलता रहे कोई तो एक दीवार से दूसरी का फासला है, तो कहाँ उसमें से निकल सकता है कोई, जब तक कि अल्लाह ताला की रहमत ही ना हो। इस दुनिया की जेलों से नहीं लोग निकल पाते कि खुद भाग जाएं कहीं, और इंसानों की बनाई होती है, अल्लाह ताला की इस जेल से कौन निकल सकता है। इसलिए ये छोटी बात नहीं है, जब अल्लाह की आयात सामने आए ना तो दिल के अंदर ये बात होनी चाहिए, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे अल्लाह की बात है, मैंने इसको मानना है। नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए, मुझे अच्छा लगे ना लगे, मेरा इसमें फायदा है या नुकसान है, मेरी इसमें मर्जी पूरी होती है या नहीं होती, आज के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं, 21वीं सदी है या 22वीं सदी है, इंसान चांद पे पहुंच गया या कहीं पे भी दुनिया में मार्स पे पहुंच गया, कुछ भी हो गया, मैंने इन आयात को रिजेक्ट नहीं करना, मैंने इनको मानना, ये मेरे रब की तरफ से, क्योंकि ये छोटी बात नहीं कि जो इंसान इनको ऐसे झुटला दे कि जैसे कोई चीज ही नहीं है और उसको कुछ भी ना समझे, ये मामूली बात नहीं है, देखें किस किस्म के अंजाम तक ये पहुंचा देती है। फिर साथ ही उन दूसरे लोगों का जिक्र आया, वल्लदीन आमनू व अमिलु सौलिहात, और वो लोग जो ईमान लाए, ईमान सिर्फ इंफॉर्मेशन का नाम नहीं है कि कोई कहे हाँ मुझे कुल हु अल्लाहु अहद आता है, मुझे सूरह इखलास पूरी आती है, मैंने रटी भी है, ईमान मान जाने का नाम है, ईमान अल्लाह ताला की फरमा बरदारी का नाम है, ईमान अल्लाह को सबसे बड़ा मान लेने का नाम है। देखिए एक होता है जान लेना, एक होता है मान लेना, दोनों में फर्क है। आप बहुत सारी चीजों को जानते होंगे लेकिन जरूरी नहीं हर चीज को आप मानते भी हो। आप कहते हैं भाई एक वायरस है इस तरह, जानते हैं आप, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते कि हाँ ऐसा कोई वायरस है भी। तो अल्लाह ताला को मानना जरूरी है, इंसान मान जाए, इंसान समझ जाए कि वो कौन है, वो मेरा मालिक है, मैं उसका बंदा हूं, मैं उसका गुलाम हूं, वो जो कहेगा मैंने वो मानना है, वो आमिल उस सालेहात और साले अमल भी करे ईमान ला के। ये ईमान काफी नहीं है कि इंसान सिर्फ कहते मैंने मान लिया बस और उसके बाद कोई हिलजुल नहीं है इंसान के अंदर, ईमान का लाजमी नतीजा होगा अगर वो वाकई सच्चा ईमान है ना, तो इंसान फिर नेक अमल के लिए कोशिश करेगा। सहाबा को देखें, जब वो ईमान लेकर आए तो हिलजुल हुई ना, ईमान अंदर से इंसान को तोड़ता है और नया इंसान बना देता है, फिर वो हिर्स करता है, फिर वो दौड़ता है, फिर उसको लालच होता है मैं नेक काम कर लूं, क्यों क्यों लालच होता है, कोई तमगे मिलने हैं उसको, कोई कोई बड़े बड़े निशाने हैदर और कोई फला बड़े बड़े कोई सलूट मिलेंगे, कोई बड़े एजाज मिलेंगे, क्या होता है उसके दिल में, नेक अमल कर लूं ताकि मेरा रब राजी हो जाए, फिर ये उसकी हेयर्स होती है, फिर ये उसकी जिंदगी बन जाती है, भाग भाग के नेकियां करता है और नेकी में पीछे रहने को अपनी नाकामी समझता है, कहता है मेरे से ये नेक अमल क्यों रह गया, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। जो ऐसे लोग होते हैं ना, अब ये इसको अगर आप ब्रैकेट में लिख लें, ब्रैकेट में कर दें, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं अभी आपको समझाती हूँ, उलाइका असहाबुल जन्ना, ये लोग हैं जो जन्नत के साथी। और जो लोग ये कहते हैं नहीं जी अमल बड़ा मुश्किल है, अमल करने को कोई ना कहे, हम तो कुरान पढ़ते ही नहीं इसलिए कि अमल करना पड़ता है, यानी कि सोच ही नहीं अमल करने की, इरादा ही नहीं है, नीयत ही नहीं है, उनके लिए क्या है फिर, कुरान पूरा कहता है ईमान और साले अमल, जो साले अमल को कुछ जाने ही नहीं और साफ ही कह दे हमसे नहीं होता ये, तो अल्लाह ताला ने इसी बात का जवाब दिया है, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तुम ये ना समझना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्या बोझ डाल दिए, वो चीज जो तुमसे कभी हो ही नहीं सकती थी, साले अमल तो इतना मुश्किल है, नेक बनना, नेक अमल करना, अल्लाह को राजी करने के काम करना, ये तो इतना मुश्किल काम है, ये तो पैगंबर करते थे, ये तो सहाबा करते थे, ये तो उनके काम थे, हम जैसे मिस्कीनों से कहाँ ये हो सकता है, हम तो कर ही नहीं सकते। नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी गलत फहमी दूर कर दी, फरमाया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम तो किसी नफ्स को मुकल्लफ ठहराते ही नहीं, उसको तकलीफ देते ही नहीं, मगर जितनी उसकी वसत है, इसका मतलब अल्लाह ताला ने जितने अहकामात दिए ना वो हमारी कैपेसिटी में हैं, हम उनको कर सकते हैं, उन हम काबिल हैं इस चीज के कि हम वो कर सके। हाँ ये अलग बात होती है कि हमारी अपनी सुस्ती हो जाए, आप देखिए ना एक बंदा है वो कहते दिल नहीं कर रहा काम पे जाने को, जॉब करने को, लेकिन ये मतलब नहीं वो कर नहीं सकता, वो कर सकता है, लेकिन हमने सुस्ती की वजह से नहीं करा। ठीक है, इसी तरह नेकियां करना हमारी पावर में है, हमारी कैपेसिटी में है, लेकिन हम ये ना कहें कर नहीं सकते, हम हमसे होता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी सुस्ती है, हम करना नहीं चाहते। वरना ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। तो ये जुमला बीच में इजाफी है, जिसको कहते हैं जुमला मोतरिजा, यानी बीच में एक बात लाई गई कि आमिल सालेहात की बात को एक्सप्लेन किया गया और उसके बाद कहा गया कि उलाय का साबुल जन्ना, आमिल सालेहात के साथ ही, कहीं ये ना हो कि तुम्हारे जहन के अंदर ये बात आ जाए कि नहीं हमसे नहीं हो सकता, हम कहाँ इस काबिल, नहीं तुमसे हो सकता है। तभी अल्लाह ने ये अहकामात दिए, ये अहकामात अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए नहीं दिए थे कि वो आके इन पे अमल करें। आप कहते हैं ना हम अमल नहीं हो सकता, ये तो बस मुमकिन ही नहीं है, नहीं ये सब अमल हो सकते हैं, हो सकते हैं, तभी अल्लाह ताला ने ये अहकामात अता फरमाए। तो ईमान लाकर अमले साले करना हर इंसान की कैपेसिटी में है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है हम तो कभी किसी पे ऐसा बोझ ही नहीं डालते जो वो उठा ना सके। मतलब आवा कहने का ये है कि हम वो इंसान थे जो ये कर ही नहीं सकते थे, अल्लाह ने हमारे पर ऐसे इतना बड़ा बोझ डाल दिया जो उठाने की हमें हिम्मत ही नहीं थी, क्या ऐसा कहना चाहते हैं? दूसरी बात ये कि एक जहन में सवाल आता है हमारे कि साले अमल करने को कहा गया है, कितना साले अमल करूं मैं, यानी क्या मेरी हद कितनी है, किस हद तक मैंने जाना है। समझ आई आपको बात की, किस क्या सवाल मैं कर रही हूं कि यानी अब मैं भाग रही हूं, भाग रही, मैंने कितना करना है, मुझे कोई पता तो होना चाहिए ना कि मेरी यहां तक मैं कर लूंगी तो देन आई एम ओके। तो उसका जवाब है ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी भी जान को अल्लाह ताला उसकी वुसअत किससे ज्यादा नहीं उस पे बोझ डालता, यानी जितनी आपकी वुसअत है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना तेज आप दौड़ सकते हैं उतना ही आपको नेक अमल करना है। बात समझ आ गई? किसी की कैपेसिटी ही नहीं है, वो बेचारा बीमार है, वो खुद अस्पताल में पड़ा हुआ है, वो सिर्फ जिक्र अल्लाह का कर सकता है लेटे लेटे ही, कोई और खास कोई नेकी नहीं कर सकता, किसी के काम नहीं आ सकता, कोई बहुत नमाजें नहीं पढ़ सकता, कोई बहुत और खिदमत खल्क नहीं कर सकता, कोई कोई ऐसे काम नहीं कर सकता, उसकी उतनी कैपेसिटी है, अल्लाह ने उसके मुताबिक ही उससे सवाल करना। आप ये नहीं कह सकते हम तो इतना कर ही रहे हैं ना, देखो फलां तो कुछ भी नहीं करता, नहीं, इसलिए कि आपसे आपकी कैपेसिटी के मुताबिक पूछा जाएगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा ताकत है, आपके पास ज्यादा सहूलतें हैं, आपके पास ज्यादा इल्म है, आपकी इस्तेदात जितनी ज्यादा है उतनी ही आपकी हद है। देखिए एक बंदा दौड़ सकता है 100 मील की पर आवर की रफ्तार पे दौड़ सकता है अगर, तो ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, और वो 20 मील फी घंटे पे चलने लगे तो वो तो स्लो है ना, और दूसरा बंदा है वो 40-20 पे चल सकता है, उसकी हालत ही ऐसी है, तो उससे नहीं पूछा जाएगा कि तू 20 पे क्यों चला, हाँ उससे जरूर पूछा जाएगा जो 100 पे चल सकता था वो क्यों 20 पे चला, उसकी हद वो है 100 और इसकी हद 20 है। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी कि आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। तो हम सबको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नियमतें दी हुई हैं, इल्म हमारी रीच में है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास और इतनी सहूलियात हैं, गाड़ियां हैं, हर तरह की इल्म के सोर्सेस हमारे एक्सेस में हैं, फिर और बहुत सारे मौके हैं, दावा के हैं, फिर इसी तरह सोशल वर्क के हैं, फिर इसी तरह इबादत के हैं, हमारे पास छत है, हमारे पास एसी है, गर्मी में हीटर है, सर्दी में हमारे पास बेशुमार सहूलियात है, अकल है, समझ है, आंखें कान हैं, दिमाग सही हमारा चलता है, ये सब चीजें हैं, फिर भी अगर हमारी रफ्तार कम है और हम सोचते हैं कि वो देखो वो फलाना देखो वो देखो, तो कुछ भी नहीं करते और हम अपने आप को बड़ी तसल्लियां देते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो नहीं, आप कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को उसके साथ। उस बेचारे के पास नहीं है रिसोर्सेस, उसके बेचारे के पास नहीं है इतनी अकल समझ। तो इसलिए हमारे पास चूंकि बहुत कुछ है, तो अल्लाह ताला ने हमसे उतना ही सवाल करना है। किसी की वुसत से ज्यादा अल्लाह नहीं उससे सवाल करेगा। तो लायक असहाबुल जन्नति हम फीहा खालिदून, यही वो लोग हैं जो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अच्छा, दुनिया में देखें आप ना, हम कितनी खूबसूरत जगह पे चले जाएं तो आप देखें वो जगह जो होती है ना, वो देख के हमारा दिल भी खुश होता है, सब कुछ होता है, मगर वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं होती, हमारी मिल्कियत नहीं होती, वो गवर्नमेंट की होती है। बड़े बड़े पार्क्स हैं, बड़ी बड़ी मतलब ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे लोग जाके रहते हैं, मतलब होटल बुक कराते हैं, वहां पे रहते हैं, सैर करते हैं, तो वो लेकिन हमारी मिल्कियत नहीं है। जन्नत में कितनी प्यारी बात है, उलाइक असहाबुल जन्नत, वो जन्नत के साथी होंगे, जन्नत का वो हिस्सा उनकी मिल्कियत होगा जहां से उनको कोई कभी निकाल नहीं सकता। यहाँ पे देखिए वो जब चाहे उसके आगे वो ब्लॉक करते हैं उस एरिया को और कहें कि नहीं आजकल बंद है, आप नहीं यहाँ पे जा सकते, तो आप नहीं जा सकते क्योंकि वो आपकी मिल्कियत नहीं है। मगर जन्नत इंसान की अपनी होगी। वो नजाना माफी सुदूर हिम्मिन गिल, अब ये प्यारी प्यारी बातें जन्नत की हैं कि जब जन्नत में जाने जाने वाले होंगे लोग, तो बाज जगह आता है कि वो लोग जो कि हदीस में, बुखारी की हदीस में है कि जो मोमिन आग से छुटकारा हासिल करके जन्नत और जहन्नम के दरमियान होंगे, तो उनकी बात की जा रही है कि उनके लिए व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, हम खींच लेंगे उनके सीनों में से गिल को, जो भी इल फीलिंग्स हैं किसी के बारे में भी। क्योंकि हम इंसान है ना, देखें कभी कोई हमारा दिल दुखा देता है, कभी कोई नाराज कर देता है, कभी कोई किसी किसी किस्म की अजीबोगरीब बात कर देता है जो इंसान के दिल को बुरी लगती है कि इसने ऐसी क्यों बात की। तो वो जो दिल के अंदर नेगेटिव फीलिंग आती है ना, अब जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो सारी गिल में आ जाती हैं, चाहे वो खलिश हो दिल की, चाहे वो घुटन हो दिल की, चाहे वो हसद हो, चाहे दिल की तंगी हो, चाहे दुश्मनी हो, वो नाराजगी या वो जो दिल के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं होती, दिल के अंदर रहती है, वो अंदर ही अंदर दिल के पकती है, वो नफरत हो सकती है, वो कीना हो सकता है, वो बुग्ज हो सकता है, यानी जितनी ये नेगेटिव चीजें हैं ना वो सब गिल में आ गई। कोई कम लेवल की है, कोई ज्यादा लेवल की है, आपको पता है। तो जैसे हदीस में आता है कि गिल को बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, यूं बाहर निकाल दिया जाएगा कि जैसे कभी है था ही नहीं। तो खास तौर पे गिल में वो भी आता है कि वो बोग्ज जिसमें धोखा होता है, कि दिल में कीना छुपा हुआ है ना, आप दिखा नहीं रहे, आप दूसरे से सलाम अलैकुम कैसी हैं बड़ी अच्छी तरह मिल रहे हैं, लेकिन आपके दिल में गिल है, वो हिडन है, छुपा हुआ है। तो ये जन्नत में दाखिल होने से पहले एक ऑपरेशन है जो हो रहा है, दो ऑपरेशन होंगे जन्नत में दाखिल होने से पहले। एक तो ये वाला, दिल से गिल निकाल दिया जाएगा। तो क्यों निकाला जाएगा, गिल लेके चले जाए फिर क्या हुआ, आखिर दुनिया में भी तो गिल लेके रह ही रहे थे, मरे भी इसके साथ ही, कभी निकाल ही ना पाए इसको, कोशिश भी करते रहे। इंसान के लिए कोशिश करना जरूरी है, वो कोशिश करता रहा लेकिन अब नहीं निकला, तो अब यहां पे आ गया, अब अलाउड नहीं है कि इसके साथ जन्नत में एंटर हो जाए। सुभान अल्लाह, क्यों? इसलिए कि जन्नत में अगर इसको लेके चले गए तो ये जो घुटन है ना दिल की, ये जो तंगी है, ये वहां पे भी चैन से नहीं बैठने देगी। जैसे दुनिया में भी आप ये देख लें कि किसी के साथ, किसी के लिए दिल में अगर गिल होता है, कहीं वो नजर आ जाता है, वो ही बातें याद आने लगती हैं, आय हाय इसने तो मुझे ये कहा था, ऐसे किया था, वो पिछली बातें फिर वो दोहराना शुरू हो जाता है, सारा मजा खराब हो जाता है। आप कहीं बड़ी खूबसूरत जगह पे गए, आपको वो नजर आ गई जिसके साथ आपकी, जिसने आपको बड़ा तंग किया था, तो अब उसको देख के क्या आपको मजा आएगा, वो सारी पिकनिक खराब हो गई, ये भी यहां आ गई है, दिल में घुटन होने लगती है ना। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि जन्नत में किसी को किसी किस्म की भी जरा सी भी तकलीफ हो, तो गिल ही निकाल दिया। बाज दफा दुनिया में इसलिए नहीं निकल पाता कि इंसान कोशिश करता है, लेकिन शैतान बार बार आके उसको डालता है, बार बार आके वही गिल डालता है। अब शैतान तो है वहां पे जहन्नुम में जल रहा, तो आप कौन आके डालेगा, अब अल्लाह ताला निकाल देगा। बाज दफा गलत फहमियां होती हैं, सिर्फ गलत फहमियां, और उसकी बिना पे गिल दिल के अंदर आ जाता है, और बस वो फिर गिल ही पलता रहता है। तो ऐसी सारी चीजों को अल्लाह ताला निकाल देगा ताकि जन्नत का माहौल पुरसकून हो। आप देखें जिसको के मिसाल के तौर पे किसी के लिए दिल के अंदर रंजिश है या कोई दुश्मनी है, अब उसको ऊपर के दर्जे पे देख लिया, हाय ये तो फिर तो कितनी और जलन होगी, हाय ये यहाँ पे भी पहुंच गए और इतनी ऊपर चली गई, वो तो फिर गिल के अंदर ही बैठा रहेगा। और ये बेसकून करती हैं ये चीजें इंसान को, बेकरार करती हैं, ये इंसान को पीसफुल नहीं रहने देती। दुनिया में भी अगर इंसान गिल निकाल देना तो देखें ये दुनिया भी इसका मतलब है जन्नत बन सकती है, लेकिन इंसान कोशिश करे। कि किसी से नाराजगी हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है, दिल में बातें भी आ सकती हैं, कोशिश यही होनी चाहिए कि रखनी नहीं है बात दिल में, इसको अंदर ही अंदर पालना नहीं है, क्योंकि ये फिर गिल बन जाता है। फिर हर वक्त इंसान उन बातों को सोच सोच के तो रंजीदा होता रहता है, तो अगर गिल नहीं होगा यहां पे भी तो कितनी अच्छी जिंदगी हो जाए। बस बसाना नहीं उस नाराजगी को, अपनी वो अंदर लावे को पकाना नहीं है। बाज दफा वो आप ऊपर ऊपर से अच्छे मिल भी रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि फिर वरना तो लोग कहेंगे ना देखो कि इसका अखलाक नहीं अच्छा, तो अब मैं अच्छी तरह इसलिए मिल रही हूँ कि मैं बड़े अच्छे अखलाक की हूँ, ताकि लोग कहें कि मैं कितना मेरा जबरदस्त अखलाक है, और अंदर अखलाक को तो दीमक लग चुकी है। अखलाक को क्या अखलाक रह गया कि ऊपर ऊपर अच्छे बन रहे हैं लेकिन अंदर गिल पाले, दिल के अंदर बातों को छुपाया हुआ है और उसको सोच सोच के फिर और पालते जा रहे हैं, तंगी और घुटन अंदर बढ़ती जाती है। वो कहते हैं कि कड़वा कुआं जो होता है ये, इसको मैं जितना मर्जी गुड़ डाल दो ये मीठा नहीं होता। इंसान का नफ्स भी ऐसा है कि जब ये कड़वा हो जाता है, इसको मीठा करने के लिए कितने भी जतन करें बड़ा मुश्किल है। तो करना क्या चाहिए, इसका ऑपरेशन खुद करें हम यहां, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये गेल पालना ना आदत बन जाती है, बाज दफा दिल में बदगुमानियां लाते ही जाएंगे, फिर उसको पालते ही जाएंगे, नेगेटिविटीज, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां वैसा है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, बातों को छोड़ना ही नहीं, पालते ही जाना, पे छोड़ दो, खुदा के लिए मर जाना है, जिस्म ने भी मट्टी हो जाना, बस करो, नहीं मैं नहीं छोड़ सकती, ये नहीं मैं छोड़ सकती, जाने दो। अब वैसे सारी बातें भूल जाते, सबक हमें याद नहीं होते, हिफ्ज हमें याद नहीं होता, लेकिन पुरानी बातें पूछ लें जितनी मर्जी की, किसने क्या कहा था, डायलॉग बाय डायलॉग याद होते, फिर उसने ऐसे कहा, मैंने ये जवाब दिया, फिर उसने ये क्यों हुआ, इसलिए कि उसको पाला हमने दिल के अंदर, हिफ्ज हम पालते नहीं है, ये तर्जुमे आप याद कर रहे हैं ना, थोड़े दिन बाद भूल जाते, पालते ही नहीं हम, बार बार उसको कहाँ दोहराते, लेकिन इन बातों को इतना दोहराते हैं, हर एक जिधर बैठे उधर करना शुरू कर दिया, नहीं तो खुद ही सोचते रहे क्यों उसने ऐसे कह दिया, क्यों उसने ये करा। तो साल हा साल से जब पाल के रखा हुआ है तो अब उसको निकालें कैसे, वो तो बड़ा प्यारा बच्चा बन गया जिसको पाला हुआ। तो ये बीमारी है, इसका इलाज तब मुमकिन है जब इंसान पक्का इरादा कर ले, नियत पक्की कर ले, दुआएं करता रहे, कोशिश करता रहे मुसलसल, क्योंकि शैतान ने हटना नहीं है, उसने फिर लाके नेगेटिव चीज डाली। नेगेटिव सोच से बचे, नेगेटिव से ना शुरू किया करें किसी के बारे में। याद रखें ये जो दिल है ना, ये बड़ी एक पाकीजा जगह है, इसको कबाड़खाना ना बनाए, इसको कूड़े की टोकरी ना बना ले, कि जितना गंद सारा दुनिया का लाके देखें, हम कूड़े की टोकरी में सारा गंद डालते हैं ना, अब इसे सारी नेगेटिव बातें इसके अंदर भरी पड़ी, कितना गंदा ऐसा दिल होगा, सिर्फ खुशगवार यादें रखें। कोई कुछ ने कुछ कह दिया, अब उस ठीक है कह दिया, तकलीफ भी होती है, दुख होता है, अगर कोशिश करें कि इसको दोहराएं नहीं, इसको भूलने की कोशिश करें, कुछ और चीजों में अपने आप को लगाएं, मत उसको पालें। शुरू में ही अगर ऐसे कर लेंगे तो तो बाद में वो नौबत नहीं आएगी कि ये जड़ पकड़े, लेकिन उसको सींचना शुरू कर देंगे तो फिर बस पालना शुरू कर देंगे तो फिर कहां से निकलेगा। तो जब इस तरह की आदत पड़ जाती है ना कि हर एक के बारे में नेगेटिव नेगेटिव से शुरू करना और नेगेटिव ही सोचते रहना, तो फिर ये उस दिल में ऐसा दिल, वो गंदा दिल बन जाता है, वो कूड़े की टुकड़ी बन जाती है जिसमें अल्लाह का कलाम भी नहीं आ सकता। इसलिए कि ये कुरान ऐसे दिल के लिए नहीं है जो गार्बेज है। कि आप कभी तसव्वुर भी कर सकते हैं कि अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की ये किताब को कि गार्बेज के करीब भी रखें? तो दिल गार्बेज है, गार्बेज बिन है, ट्रैश है, और उसके अंदर सोच रहे हैं कुरान आ जाएगा। फॉरगेट इट देन। जिस घर में कुत्ता होता है वहां पे फरिश्ते नहीं आते, जिस दिल के अंदर ये भी कुत्ते हैं, ये जो गंदगी है ना, ये भी कुत्ते हैं, दिल के कुत्ते हैं, तो वहां पे कैसे कुरान आएगा? तो अब लेकिन बाज दफा इंसान कोशिश के बावजूद, क्योंकि इंसान है और शैतान इसके साथ लगा हुआ है, वो कोशिश के बावजूद कोशिश करता भी रहा, उसने बड़ा चाहा भी, लेकिन बस कुछ चीजें हैं वो नहीं निकल सकी। वो बड़े बड़े कीने नहीं थे, हो सकता है कोई थोड़ी बहुत रंजिश हो सकता है किसी के बारे में दिल खट्टा हो गया हो। अब वो भी नेक है, ये भी नेक है, तो फिर क्या होगा? अब जन्नत जैसी पीसफुल जगह, इतनी प्यारी जगह, ड्रीम लैंड, उसके अंदर अल्लाह ताला नहीं ले जाने देंगे ऐसे दिल। तो अब इनको रोक दिया जाएगा। वो जो बुखारी की हदीस में, उसमें कि मोमिन आग से छुटकारा हासिल करके जन्नत और जहन्नुम के दरमियान, ये एक पुल है, पुल सिरात नहीं है, वो वाला पुल अलग है, वो तो जहन्नुम के ऊपर है ना लगाया हुआ। एक है जन्नत और जहन्नुम के दरमियान पुल, कंतरा इसको कहा जाता है, ये लास्ट चेक पॉइंट है जन्नत में जाने से पहले। यहाँ पे अब क्या ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे इनको रोक लिया गया और आपस के मुजालिम का बदला हो जाएगा और पाक होकर जन्नत में जाने की इजाजत पाएंगे जन्नती। वल्लाही वो लोग अपने अपने दर्जों को और मकानों को जन्नत में इस तरह पहचान लेंगे जैसे दुनिया में जान लेते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। आप में से कोई अपने घर का रास्ता भूलता है? नहीं, हर एक को अपने घर का रास्ता पता होता है, हर एक अपने घर को पहचानता है, ये वाला मेरा घर है। बच्चे भी इवन उनसे पूछते हैं ना, अब उनको कभी बच्चों को ड्राइव पे लेके जाते हैं तो अच्छा इधर को मुड़ना है किधर को जाना है, बच्चे भी बता देते हैं। इससे भी ज्यादा सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें वहां पे पहुंचा देना, हम इस काबिल तो नहीं कि ये इंसान अपने जन्नत के घरों को देखे, पहचाने का कि ये मेरा घर है। कभी हमें अल्लाह, हमें उनको कुछ नसीबों में शामिल फरमाना। फिर सुदी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि अहले जन्नत जन्नत के दरवाजे पे एक दरख्त देखेंगे जिसकी जड़ों के पास से दो नहरें बह रही होंगी। ये इनमें से एक का पानी पिएंगे जिससे दिलों की कदूरतें सारी धुल जाएंगी। ये शराबे तहूर है, यानी वो उन्होंने वो ड्रिंक पिएंगे तो क्या होगा, सारा गिल दिल का दूर हो जाएगा। फिर दूसरी नहर, ये मैंने आपको बताया ना दो ऑपरेशन होंगे, दूसरी नहर में नहाएंगे जिससे चेहरे तरोताजा हो जाएंगे, ना बाल बिखरे होंगे, ना ना कोई सिंगार करने की जरूरत होगी, जवान हो जाएंगे बिल्कुल, खूबसूरत हो जाएंगे, हसीन हो जाएंगे, और बूढ़े भी जवान हो जाएंगे। वो एक सर्टन एज को पहुंच जाएंगे जिसमें जन्नत में वो सारे एक ही एज के होंगे, यंग बिल्कुल। तो ये दो नहरें हैं, एक ने अंदर की धुलाई कर दी, एक ने बाहर खूबसूरत बना दिया। जाहिर और बातिन दोनों खूबसूरत होंगे तो फिर जन्नत में जाएंगे। आखिर जन्नत के सिटीजन्स भी देखें, अल्लाह ताला ने जन्नत खूबसूरत बनाई है ना, तो उनके सिटीजन्स को भी खूबसूरत बनाया कि उनको भी इतना हसीन करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा ना। ऐसे कि देखिए ना, अब कितनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजर के वो आ रहे हैं कि कयामत का मंजर देखा तो हिसाब किताब, फिर आमाल का तुलना, फिर किताबों का हाथों में मिलना, कितनी बड़ी सीन और कितनी टेंशन से गुजर के आ रहे हैं। तो अब इनको तरोताजा कर दिया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा जन्नत के लिए। सुभान अल्लाह, कि जन्नत में जाएं भी तो ऐसे जाएं कि वाकई पता चले कि ये जन्नत वाले हैं। ऐसे नहीं कि हवाइयां उड़ी हुई हैं, बाल बिखरे हुए हैं, हालो बेहाल है तो जन्नत में जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। तो पहले उनको यहाँ पे तैयार किया जाएगा, जैसे किसी दुल्हन को तैयार किया जाता है, इस तरह जन्नत वालों की भी खूबसूरत तैयारी होगी, फिर अंदर जाएंगे। और इससे हमें यहाँ पे पता चलता है कि देखें, किसी जगह जो बड़ी खूबसूरत जगह है उस पे जाने के लिए अल्लाह ने दोनों तैयारियां कराई हैं, बाहर की भी और अंदर की भी। हम जब कहीं तैयार होने की बात करते हैं ना, तो हमारी सारी तवज्जो सिर्फ बाहर की तैयारी पे होती है, अंदर किसने देखना, ये सोचते हैं ना, अंदर किसने देखना है, सब बाहर ही देखेंगे। जन्नत ऐसी जगह नहीं जिसमें सिर्फ बाहर खूबसूरत हो, जन्नत वो जगह है अंदर भी खूबसूरत हो। तो दुनिया में भी क्यों ना ऐसा करें कि जब तैयार हो तो बाहर तो खूबसूरत बनाएं, एक दफा दिल पे भी नजर डाल लिया करें, इसको भी खूबसूरत करना है, इसमें भी कोई गंदगी है, कोई और देखे ना देखे, मेरा रब तो देख रहा है। और फिर आगे ये वाली बात है जो मेरी मेरी बहुत फेवरेट, ये आगे आ रहे हैं तो क्या फेवरेट मेरी बात है कि वो वकालू, वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा, वो कहेंगे सारी तारीफ सारा शुक्र उस जात के लिए जिसने हमें इसकी हिदायत दी, राह दिखाई, राह पे चलाया और इस मंजिल तक पहुंचाया। लिहाजा यानी जन्नत और उसकी नेमतें और इस रास्ते पे हमें डाला, ये हाजा है, इस पे हमें चला दिया, इस रास्ते पे चला के, क्योंकि हिदायत क्या है, राह दिखाना, रास्ते पे चलाना और मंजिल तक पहुंचाना, ये सब हिदायत है, हिदायत के मरहले हैं। हिदायत यानी काफिर के लिए हिदायत ये है कि उसको ईमान मिल जाए, ईमान वाले के लिए हिदायत के और बहुत सारे दर्जे हैं। देखिए हम सूरह फातिहा में मांगते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो एक नेक भी मांग रहा है, बद भी मांग रहा है, पैगंबरों ने भी मांगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही दुआ मांगा करते थे। तो क्या है इसका मतलब, है कि इसके भी दर्जात हैं हिदायत के, और ये हिदायत का फिर जो आखिरी दर्जा वो है कि इंसान जन्नत में पहुंच जाए। तो ये कितने दर्जे हैं जो इंसान पार करता करता अल्लाह से करीब होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर 100 दर्जे, तो कोई 1 पे खड़ा हुआ है उसको भी इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहना है, कोई 10 पे खड़ा हुआ है, कोई 20 पे खड़ा हुआ है, कोई बहुत ही अच्छा है वो 90 पे खड़ा हुआ है, तो कोई 99 पे खड़ा हुआ है। तो इसके इतने दर्जात हैं कि इंसान हमेशा मांगता रहे हिदायत, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, दूसरी ये बात है कि वो देखें जन्नत में जाके क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। और आप देखिए आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया था ना, सबसे पहली बात उन्होंने मुंह से पता है क्या निकाली थी, उनको छींक आई थी तो उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और जन्नत तक पहुंच गई, यानी इंसान जब तेरी शुरुआत हुई तब भी अल्हम्दुलिल्लाह से हुई, और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह किस बात पे, कि अल्लाह हदाना लिहाजा, वो उस अल्लाह का शुक्र है और उस अल्लाह की सारी तारीफ है, क्योंकि हम्द जो है ना वो दो चीजों से बनती है, शुक्र भी और तारीफ भी। तो हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं और हम उसका शुक्र अदा करते हैं, वो अल्लाह जिसने हमें हिदायत दी इसकी, वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, हम तो नहीं हिदायत पा सकते थे अगर वो हमें हिदायत ना देता। यानी वो वहां पे ये नहीं कहेंगे हम तो बड़े नेक होते थे जी, हमने तो बड़ी नेकियां की, मैं तो सदका ही बड़ा करती थी, मैंने तो ऐसे किया, मैं तो रातों को जागती थी, मैं तो रोजे इतने रखती थी, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है। कभी मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसे ही फील होता है कि अगर मैं यहां पहुंच गई, अगर अल्लाह से दुआ है अल्लाह पहुंचा दे, तो मुझे लगता है कि जैसे ये मेरे अल्फाज हैं, इसलिए क्योंकि आज के आप दौर में देखें, हम जिस दौर में रह रहे हैं इसमें वाकई इतनी डिस्ट्रैक्शन है, इतनी तरह की गफलतों के सामान है, इतनी शैतानी चीजें हैं, इतने फितने हैं कि बेशुमार। इस सारे में अगर कोई हक का रास्ता पाके और मौत तक इसके ऊपर चल सकता है, तो वो ही है जिसको अल्लाह थाम ले। इंसान अपनी पावर, अपनी अपनी किसी अकल, अपनी समझ, अपनी कोई बहुत बड़ी खूबी के साथ ये नहीं कर सकता। ये मेरा रब ही है जिसको संभाल ले, जिसके साथ वो भलाई का इरादा कर ले, जिसको वो चला दे, जिसको वो सहारा दे दे, जिसकी उंगली वो थाम ले। तो रब जिसको सहारा दे दे ना, वही इस दुनिया की पुलसी रात से गुजर के, क्योंकि आखिरत में एक पुलसी रात है, एक दुनिया में भी पुलसी रात है, इस पे भी चलना बहुत मुश्किल है। और इस पे जो गिरे बगैर चलता रहेगा मौत तक, वही फिर आखिरत के पुलसी रात में भी सेफली उसको क्रॉस कर सकेगा। इसके लिए सिर्फ अल्लाह की मदद के साथ ही हो सकता है। इसके लिए सिर्फ अल्लाह ताला का साथ हो, वो जिसको चाहे और जिसका सहारा बन जाए, वो ही हिदायत पा सकता है। वरना देखिए, आप देखें कहीं शॉपिंग है, कहीं एंटरटेनमेंट है, कहीं और इतनी डिस्ट्रैक्शन है, और इतने तरह के फितने हैं कि इंसान का एक भी कदम अगर फिसल गया तो वो हिदायत के रास्ते से हट जाएगा। हिदायत का रास्ता सिर्फ एक है, बाकी सब रास्ते गुमराही के, और शैतान हर रास्ते पे खड़ा हुआ है और आवाजें दे रहा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब ऐसे में वो रब ही संभाल ले हमें, तो हम गुजर सकते हैं। वो अगर ना संभाले तो हमें को ताकत नहीं। इवन दुनिया में ये बात हम सब मानते मानते ना, ये वाकई वो अल्लाह ही है जो चलाने वाला है, हमारी क्या ताकत। हम तो इरादा भी कर ले तो हम अपना इरादा भी पूरा नहीं कर सकते। तो उस रब से दुआ है कि अल्लाह हमें चलाते रहना, आखिरी सांस तक तू हमारा साथ ना छोड़। अल्लाह तूने हमें यहां तक तूने ही पहुंचाना, वो फिर वहां तक पहुंच गए, कितना लंबा सफर था, कितनी थकन होगी, कितना थक गए जिंदगी में भी, कितने रास्तों से गुजरे, कितनी कुर्बानियां दी, कितनी जगह सबर किया, फिर कयामत की हौलनाकियों से गुजरे, फिर पुल सिरात की सख्ती से गुजरे, अब जन्नत में दाखिल हो गए, तो कितना सुख का वो सांस होगा, कितना बड़ा रिलीफ होगा, शुक्र है पहुंच गए। अब बताएं हम यहाँ पे भी कोई जरा सी मुश्किल हो के उससे गुजर के कहीं आसानी आती तो कहते ना अल्हम्दुलिल्लाह, आए शुक्र है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। ये तो सारी जिंदगी शुक्र अदा करने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले थे, जब वहां पहुंचेंगे तो कैसे नहीं मुंह से निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे ज्यादा शुक्र इस बात का कि अल्लाह तूने यहां तक पहुंचा दी, तूने राह दिखा दी, तूने हमारी रहनुमाई कर दी अल्लाह यहां तक की। हम तो नहीं कर सकते थे, हमारी यानी वो मान रहे हैं कि अल्लाह हमारी कोई ताकत नहीं थी। लकद जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक, अलबत्ता तहकीक आए रसूल हमारे रब के हक लेके। फिर आप देखिए, आप वो देख रहे हैं यहाँ पे जन्नत देख रहे हैं, उसकी नेमतें देख रहे हैं, उसके बागात देख रहे हैं, उसकी कितनी कितनी तरह की जो आसाइशें हैं वो देख रहे हैं, उसकी क्या मतलब जो इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता, वो कभी पढ़ा था, कभी कुरान में आयतें आई थी, कभी हदीस में सुना था कि जन्नत ऐसी होगी, उसके फल ऐसे होंगे, उसके बागात ऐसे होंगे, उसके महल ऐसे होंगे, उसमें ऐसी सवारियां होंगी, उसमें ऐसा सुख चैन होगा, उसकी नहरें ऐसी होंगी, ये कभी सुना था। लेकिन तस्वुर फिर भी तो ऐसे हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन आप जब देखेंगे ना तो कहेंगे लकद जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक, वाकई जो रसूलों ने बातें की थी बिल्कुल सच थी वो, क्योंकि अब वो प्रैक्टिकली सामने आ गया ना, पहले तो सिर्फ तसव्वुर में था, अभी हम क्या सोचते हैं, अच्छा जन्नत की नहरें हैं। सॉरी ये मैं बात को बीच में रह गई थी, इसका मतलब मेरी तजरी में तातिहुल अनहार, उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, ये वाली बात बीच में रह गई थी। तो ये हम कितनी दफा पढ़ते हैं कुराने पाक में, लेकिन उसका सही तसव्वुर नहीं हमारे जहन के अंदर, हम सही तरह उसको मतलब समझ नहीं सकते अभी भी। आप वो कहते हैं वो हमारे जो हमारे पास रसूल बात लेकर आए थे ना बिल्कुल सच्ची थी। और फिर इसी तरह ये भी कि जो रास्ता उन्होंने बताया था कि ये रास्ता जन्नत तक लेके जाएगा, वाकई उन्होंने बिल्कुल सच्ची बात बताई थी, वाकई उसी रास्ते पे चलने से यानी हम जन्नत तक पहुंचे। उन्होंने ये हमें समझाया था कि ये सिराते मुस्तकीम पे चलना, ये है सिराते मुस्तकीम, वाकई वो सही बात थी। ठीक है, वह नू दू अंतिल कुमुल जन्नत, और वो पुकारे जाएंगे, उनको ना कोई पुकारेगा, कोई पुकारने वाला होगा, निदा दी जाएगी, कोई अनाउंसमेंट होगी, अंतिल कुमुल जन्नत उरिस्तुमुहा, कि ये है तुम्हारी जन्नत, तुम वारिस हो गए हो इसके, अब ये तुम्हारी है, इट्स योर्स, बिमा कुंतुम तामलून, किस वजह से, बवजह उसके कुम तुम तामलून, ये है कि माजी इस्तमरारी बन जाता है, यानी कंटिन्यूसली कोई काम करते रहना, तो जो तुम किया करते थे अमल, करते रहे थे अमल, उसकी वजह से तुम इसके वारिस बने। अब इन वहां पे तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ही हमें हिदायत दी, और हम तो इस तक पहुंच ही नहीं सकते थे अगर तू ना हिदायत देता, यानी सारा तो वो क्रेडिट अल्लाह ताला को दे रहे हैं, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि तुमने अमल किया इस वजह से तुम यहाँ पहुंचे, तो किस वजह से पहुंचे, अपने अमल की वजह से पहुंचे या अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी थी उसकी वजह से पहुंचे। तो बात यह है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला फरमाती हैं, बुखारी में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि अमल पे लगे रहो, यानी हमेशा अमल करते रहो और उसको बढ़ाते जाओ, अल्लाह ताला की कुर्बत यानी हासिल करते जाओ ना, आगे आगे अमल और बढ़ाते जाओ, और ये बात याद रखो कि किसी शख्स का भी अमल उसको जन्नत में नहीं ले जा सकता, यानी अमल तो करते जाओ मगर ये ना कभी समझना कि ये अमल मुझे जन्नत तक ले जाएगा, और अब तो मेरे लिए जन्नत है ही है, मैंने तो ये अमल कर लिया, नहीं, बल्कि अमल इसलिए करना है अल्लाह ताला की रहमत मिले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है जिसकी वजह से इंसान जन्नत पा सकेगा। तो साहबा ने पूछा यानी कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता मगर सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की रहमत उसके शामिल हाल हो, तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह आप भी नहीं जा सकते, आपने फरमाया मैं भी नहीं जा सकता, ये तो अल्लाह ताला का एक हदीस मत है, फजल और रहमत है कि जो इंसान को हासिल हो जाए तो वो जन्नत में जा सकता। तो फिर यानी फिर हमारे अमल का क्या, अगर अल्लाह की रहमत से ही जन्नत में जाना फिर अमल क्यों करें हम, और फिर यहाँ पे तो कहा गया कि अमल की वजह से तुम्हें जन्नत मिल रही है, तो पहले सवाल का जवाब ये है कि हम अमल क्यों करें, हम अमल इसलिए करें कि ये अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रहमत के हम हकदार होते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे होती है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला रहमत की नजर हम पर डालता है हमारे अच्छे अमल देख के, तो अल्लाह ताला की रहमत से ही जन्नत मिलेगी, हमारे अमल कौन से ऐसे खास है जिससे जन्नत जैसी जगह मिल सके, देखिए तो अल्लाह ताला की रहमत लेकिन कैसे मिलेगी, वो तब मिलेगी जब हम नेकियों में दौड़ दौड़ के अपने रब को दिखाएंगे, हम कोशिशें कर करके दिखाएंगे, जो जईफ है वो अपने मुताबिक कोशिश कर रहा है, जिस जो यंग है वो अपने मुताबिक कोशिश कर रहा है, जिसके पास इल्म है बहुत वो अपने मुताबिक लगा हुआ है, जिसके पास इल्म कम है बेचारा जितना उसके पास है वो उस मुताबिक ही कर रहा है, जिसके पास सहूलत नहीं है बिल्कुल कोई भी वो अपने मुताबिक कर रहा है, जिसके पास बहुत सारी सहूलतें वो अपने मुताबिक दौड़ा जा रहा है, अल्लाह ताला की नजरों में तो सारे ही है, वो देख रहा है ये बंदा कितना मुझे राजी करने के लिए भाग रहा है, बस यही है जो उसकी रहमत को मुतवज्जे कर देती है। सारों की कोशिशें अलग अलग हैं, सारों की कोशिशें उनकी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं देखना कि इसने कितनी कोशिश की, 100 इसको करनी थी और इसने 100 इसने की, इसको तो 1000 करनी चाहिए थी, नहीं, इसकी इसकी ताकत ही 100 की थी, उसने उतनी की। अल्लाह ताला उसको अप्रिशिएट करता है। ये जो कहा गया ना, बीमा कुंतुम तामलून, तो तुम जो अमल करते थे, ये है अल्लाह ताला की कदरदानी, ये है उसकी अप्रिसिएशन, कि वो ये नहीं कहता तुम्हारे तो अमल क्या काबिल थे, शुक्र करो तुम्हें मैंने जन्नत दे दी, तुम तो इस काबिल ही नहीं थे, देखा तो कितने गुनाह भी तुमने साथ किए थे, तो मैं ना माफ करता था, तुमने कहाँ यहां तक पहुंचना। हम तो किसी को दे भी ना कोई चीज तो साथ इस तरह की 10 बातें सुना के फिर देते हैं, तुम कहाँ इस काबिल थी, लो ये तो हमने ही इनके ऊपर एहसान किया, लो ये तो आए थे लुटे पुटे थे, ये तो हमने ही इनको घर दिलाया, ये तो हमने इनके साथ ही एहसान कर दिया, वरना ये कहाँ, हम इस तरह नेकियां भी करते हैं उसके बाद इस तरह की बातें सुनाते हैं, और अल्लाह ताला क्या फरमाता है, क्योंकि वाकई वाकई सारा सर उसकी रहमत होगी कि कोई इंसान जन्नत में जाकर रोक सके, फिर भी वो इतना रहीम है, इतना गनी है, गनी गनी बेनियाज है वाकई अल्लाह, वो जो अल्लाह ताला के नामों को आप वाकई महसूस कर सकते हैं कि उसकी वुसत देखें, कि वो ये नहीं कहता कि तुम्हें ये भी याद है ना कि क्या क्या करते रहते तुम काबिल भी हो इसके, वो कहता नहीं, बेमा कुन तुम दामन, ये जो जो इंसान की टूटे फूटे काम है, कोई इंसान अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकता, कोई इंसान अल्लाह ताला की इबादत का हक नहीं दे सकता, कोई इंसान अल्लाह ताला के एहसानात को का जैसे शुक्र है वैसे अदा नहीं कर सकता, कोई इंसान अल्लाह ताला की नेमतें जो उसने की हैं उनका बदला नहीं दे सकता, चुका नहीं सकता, कितना भी अमल करता रहे, हत्ता के इंसान अगर सारी जिंदगी भी सजदे में पड़ा रहे तो वो अल्लाह ताला का हक नहीं अदा कर सकता, वो फिर भी जन्नत के काबिल नहीं हो सकता, कि वो काबिल है उसको मिलनी चाहिए उसका हक बनता है जन्नत, ये नहीं हो सकता, लेकिन जब अल्लाह ताला अता फरमाएगा तो वो उसकी रहमत होगी, मगर वो कहेगा यही, तुम जो अमल करते थे उसने कितनी कदरदानी करते, अल्लाह अकबर, ऐ रब तू ही ऐसा है कि तू ये कर सकता है, दुनिया में आप इंसानों के लिए कितना भी करते रहे ना, कदर नहीं करते वो, कदर नहीं करते वो, फिर भी ऐसे उठा कर कर भी लिया तो क्या कर दिया, इतना भी क्या तुमने कर दिया, यानी वो उस तरह से कदरदानी आप पा ही नहीं सकते इंसानों से, ना इंसान छोटे, उनके दिल भी छोटे है ना, और उनकी बातें भी छोटी ही होती है, अल्लाह वो रब है जो आलमीन का रब है, देखिए उसकी वुसत कि वो किस तरह से, वो कैसा गनी है कि वो उन सारी बातों को छोड़ के कहता है वो जो तुम नेकियां करते थे ना उसकी वजह से तुम वारिस बनाए गए, सुभान अल्लाह। और हदीस में आता है कि हर जन्नती को अपनी जहन्नुम का ठिकाना दिखाया जाएगा ताकि वो और भी शुक्र अदा करे, इसीलिए वो कहेगा ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे हिदायत दे दी, मैं इससे बच गया, वरना मैं कहीं आना चला जाता, और हर जहन्नमी को भी अल्लाह ताला उसका जन्नत का ठिकाना दिखाएगा, यानी इसका मतलब हर इंसान का एक ठिकाना जन्नत में और एक ठिकाना जहन्नम में, वो जिसको चाहे अपने लिए अलॉट करा ले, जैसे प्लॉट होते हैं वो कहते हैं आप ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, जिसकी कीमत आप दे देंगे वो आपका हो जाएगा, तो जिसने जन्नत की कीमत तो नहीं कोई दे सकता, मगर उसके मुताबिक अमल करके दिखाए उसको वो ठिकाना मिल जाएगा, जो जहन्नम वालों वाले अमल करेगा वो उस प्लॉट को ले लेगा, तो वो इसको क्यों ये जन्नत का ठिकाना दिखाएगा, ताकि उसकी हसरत बढ़ जाए, उस वक्त को कहेगा काश मैं भी हिदायत पा जाता, तो जब जन्नतियों को जन्नत की जगह दे दी जाएंगी ना, तब ये अनाउंसमेंट होगी कि ये है वो जन्नत जिसको तुम इसलिए दिए गए जो तुमने नेकियां की थी, इसकी वजह से तुम इसके वारिस बनाए गए।